पिछले पाठ में आपने न्याय के मत को समझा था कि न्याय मत में ज्ञान की ग्राहक सामग्री क्या है, अनुव्यवसाय है, और ज्ञान प्रामाण्य की ग्राहक सामग्री जो है वह अनुमान है। इस तरह से ग्राहक सामग्री भिन्न भिन्न होने के कारण ये परतः प्रामाण्यवादी कहलाते हैं, ठीक है। आज अच्छा उसमें भी ज्ञान का ग्रहण होता है अनुव्यवसाय से और ज्ञान के प्रामाण्य का ग्रहण होता है अनुमान से। तो ज्ञान ग्रहण की सामग्री हो गई अनुव्यवसाय और ज्ञान प्रामाण्य की ग्रहण सामग्री हो गई अनुमान, दोनों भिन्न भिन्न है, तो ये परतः प्रामाण्यवादी हो गए न्याय वाले। इनके मत में प्रामाण्य और अप्रामाण्य के लिए दोनों बराबर ही है। जैसे प्रामाण्य का ग्रहण इनके मत में अनुमान से होता है, उसी तरह से अप्रामाण्य का ग्रहण भी जो है अनुमान से ही होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब ये जो इन्होंने कहा इसको जो है ना आपको समझना है। वो कैसे समझेंगे तो उसको थोड़ा मैं बताता हूँ कि न्याय का ये तो कहने के लिए हो गया, जो आपने पिछले पाठ में नोट किया कि कैसे जो है पदार्थ ज्ञान का ग्रहण होगा, कैसे पदार्थ प्रामाण्य का ग्रहण होगा, कहने के लिए तो बता देंगे, आप शब्द का अर्थ भी बता देंगे कि अनुव्यवसाय क्या है, अनुमान क्या, अनुमान क्या है, तो जिससे अनुमिति होती है उसको अनुमान कहते हैं। तो अब इसको समझना है, कैसे समझेंगे तो देखिए कि जैसे सरोवर आदि स्थान में जब हम जल देखते हैं, जब कोई प्यासा व्यक्ति देखता है कि सरोवर में जो है ना जल है, तो जल देख करके वह प्यासा मनुष्य क्या करता है, उस सरोवर पर पहुंचता है और सरोवर में जल पी करके अपनी प्यास बुझाता है, ठीक है। तब जल पाने के लिए जो उसने अपना प्रयास किया, उस प्रयास की जो सफल प्रयास में जो सफलता उसको मिली, उस सफलता को देख करके वह जो प्यासा व्यक्ति है वह अनुमान करता है कि उसे जो जल ज्ञान हुआ था, सरोवर में जो है ना जल है, इस तरह से जो जल ज्ञान हुआ था वह जल ज्ञान प्रमाणभूत था, प्रमात्मक था, हाँ, यथार्थ था, और उसी ज्ञान के आधार पर वह जल प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किया वह उसका प्रयास सफल हुआ, मतलब जिसे जल समझा गया वह जल के रूप में प्राप्त भी हुआ। तो इस तरह से जब कोई प्यासा व्यक्ति देखता है सरोवर में जल है और सरोवर में जल को देख करके वहाँ जाता है, जल पीता है और जल पीने के बाद फिर अनुमान करता है कि ओ मुझे जो इस सरोवर में जल का ज्ञान हुआ था वो प्रामाणिक था, वो यथार्थ था। इस तरह से अनुमान के द्वारा जो है प्रामाणिकता का ज्ञान होता है, प्रामाण्य का ज्ञान होता है, ये बात कहना है न्याय वालों का। इसके विपरीत जो है, इससे तो प्रामाण्य का ज्ञान हुआ, माने वह अति प्यासा जो है प्यासे को जल का ज्ञान हुआ, फिर वह सरोवर में जाकर के जल को पिया, उसकी प्यास शांत हुई, इसके बाद वह अनुमान करता है कि मुझे जो सरोवर में जल का ज्ञान हुआ था वो बिल्कुल सही था। तो इस तरह से जल ज्ञान का सही का होने का जो ज्ञान है वही है प्रामाण्य ज्ञान, और वह प्रामाण्य ज्ञान वह प्यासा अनुमान के द्वारा करता है। अब अप्रामाण्य का ज्ञान भी ऐसे ही होगा, अनुमान से ही होगा, कैसे तो देखिए, मरु मरीचिका आपने सुना होगा। मरु मरीचिका कहते हैं, मरु कहते हैं मरुस्थल, जहाँ पर कि केवल रेत ही रेत होती है, और उसमें मरीची, मरीची मतलब किरण, जब आप दूर से मरुस्थल में देखेंगे ना दोपहर में, तो आपको लगेगा कि इसमें जो है ना वो सूरज की किरणें जब टकराती हैं रेत से, तो उससे दूर से देखने पर जैसे लगता है कि पानी की लहर जो है ना वहाँ पर चल रही है। तो मरु मरीचिका को देख करके प्यासा व्यक्ति को जो है ना वहाँ जल का ज्ञान होता है, और जैसे सरोवर में पानी की लहर देख करके जल का ज्ञान होता है, उसी तरह से मरु मरीचिका में भी जो है ना लहर देख करके, वो जो मरु मरीची है उसको देख करके निर्जल स्थान में भी जो है जल का उसको ज्ञान होता है, ठीक है। और वह फिर जल पीने की इच्छा से वहां जाता है, और वहां जब जाता है तो जल उसको प्राप्त होता नहीं है। जब जल प्राप्त नहीं होता है फिर वह अनुमान करता है कि ओ हम मुझे जो यहाँ मरुमरीचिका में जल का ज्ञान हुआ था वह तो अप्रमाण भूत था, माने अप्रामाणिक था, वह अयथार्थ था। इस तरह से जब वह प्रयास किया और उसको जल नहीं मिला, जल नहीं मिलने के बाद जो है वह अनुमान करता है कि मेरा जो जल ज्ञान था वह अप्रामाणिक था, उसमें अप्रामाण्य था। इस तरह से आपने देखा कि अगर सरोवर में जल मिल गया, उसको जल को पिया, प्यास बुझा लिया, तब वह अनुमान करता है कि सरोवर में जल का जो मुझे ज्ञान था वह प्रामाणिक था। और यहाँ मरुमरीचिका में जब वहाँ जल का ज्ञान होने के बाद वहाँ जाता है और उसको जल प्राप्त नहीं होता है, फिर वह अनुमान करता है कि मरुमरीचिका में जो मुझे जल का ज्ञान हुआ था वह अप्रामाणिक था। इस तरह से प्रामाणिकता का ज्ञान और अप्रामाणिकता का ज्ञान ये जो है वह परतः ही हुआ, माने अनुमान के द्वारा ही हुआ। आ जबकि ज्ञान ग्राहक सामग्री जो है दोनों में अनुव्यवसाय एक ही है, क्योंकि जैसे जल लहर को देख करके सरोवर में जल का ज्ञान हुआ, ऐसे ही मरुमरीचिका को देख करके जो है ना उसमें जल का ज्ञान हुआ, और उस ज्ञान का ग्रहण जो हुआ था वहाँ पर सरोवर वाले में भी अनुव्यवसाय से हुआ था, मानस प्रत्यक्ष से हुआ था, यहाँ भी जो है अनुव्यवसाय से ही जल के ज्ञान का ग्रहण हुआ। तो ज्ञान ग्राहक सामग्री जो है प्रामाण्य स्थल और अप्रामाण्य स्थल में दोनों में ज्ञान ग्राहक सामग्री जो है वह अनुव्यवसाय ही है, लेकिन प्रामाण्य और अप्रामाण्य ग्राहक सामग्री जो है दोनों में अनुमान है, और परतः ये हो गया। परतः माने भिन्न, ज्ञान सामग्री से जो भिन्न है उसी को पर कहा गया है, और पर अर्थात अनुमान के द्वारा चूंकि यहाँ पर प्रामाण्य का ग्रहण होता है, यहाँ पर अनुव्यवसाय के द्वारा प्रामाण्य का ग्रहण नहीं होता है, इसलिए ये परतः प्रामाण्य हो गया। ठीक है, तो अब आपने ये समझा कि न्याय के मत में जो ये कहा गया कि ज्ञान का पदार्थ ज्ञान का ग्रहण अनुव्यवसाय से होता है, माने मानस प्रत्यक्ष से होता है, और पदार्थ के प्रामाण्य का ग्रहण जो है वह अनुमान से होता है, वह कैसे होता है उसका सिस्टम मैंने बताया। तो प्रामाण्य का ग्रहण और अप्रामाण्य का ग्रहण दोनों परतः होता है, माने अनुमान से होता है, ज्ञान ग्राहक सामग्री से नहीं होता है, ऐसा जो है न्याय का मत है। ठीक है, अब आपको मीमांसक के मत को समझना है, और मीमांसक के मत में भी तीन मत हैं। एक तो प्रभाकर गुरु का मत है, एक कुमारिल भट्ट का मत है, और एक मुरारी मिश्र का मत है। तो इसमें आपकी तर्क भाषा में मुरारी मिश्र के मत की चर्चा नहीं है और प्रभाकर गुरु के मत की भी चर्चा नहीं है, केवल कुमारिल भट्ट के मत की चर्चा है। तो अपेक्षा को देखते हुए मैं केवल यहाँ पर जो आपको नोट कराऊंगा वो केवल कुमारिल भट्ट का ही मत नोट कराऊंगा, क्योंकि वही हमें इसमें पढ़ना है और वही इसमें समझना है। तो अब लिखिए मीमांसक मत, जैसे ऊपर में आपने न्याय मत लिखा था ना, उसी तरह से यहाँ पर लिख लीजिए मीमांसक मत, और ब्रैकेट में यहाँ दे दीजिए कुमारिल भट्ट, क्योंकि तो मीमांसक में भी तीन हुए हैं ना, तो हमें तो केवल कुमारिल भट्ट को समझना है, तो ब्रैकेट में जो है ना कुमारिल भट्ट लिख लीजिए। तो मीमांसक मत ब्रैकेट में कुमारिल भट्ट लिख लिया आपने। अब देखिए कि इनके यहाँ क्या स्थिति है। न्याय मत में आपने देखा कि ज्ञान ग्राहक सामग्री अनुव्यवसाय है, और ज्ञान प्रामाण्य ग्राहक सामग्री जो है वह अनुमान है, और प्रामाण्य की सामग्री भी अनुमान है, और अप्रामाण्य ग्राहक सामग्री भी अनुमान है उनके यहाँ। लेकिन मीमांसक मत में कुमारिल भट्ट के मत में अंतर है। क्या अंतर है तो उसको देखिए, इसमें लिखिए कि ज्ञान ग्राहक सामग्री, फिर लिखिए ज्ञान प्रामाण्य ग्राहक सामग्री, दो पॉइंट बनाइए डैश देकर के, ज्ञान ग्राहक सामग्री और ज्ञान प्रामाण्य ग्राहक सामग्री चाहे ग्रहण सामग्री, जैसे वो न्याय मत में बनाया था आपने दो बिंदु। तो पहला बिंदु है ज्ञान ग्राहक सामग्री और दूसरा बिंदु है ज्ञान प्रामाण्य ग्राहक सामग्री। ठीक है, अब इनके मत में क्या होता है कि जब पदार्थ का ज्ञान होता है ना, तो पदार्थ ज्ञान का जो विषय है उस विषय में एक नया धर्म उत्पन्न होता है, और वह जो नया धर्म उत्पन्न होता है उसका नाम होता है ज्ञातता। क्या क्या नाम होता है उसका? ज्ञातता। आपको मैंने पहले पाठ में ये पूर्व सत्र के पाठ में बहुत बार बताया था कि ज्ञान का विषय क्या होता है, तो जिसका ज्ञान होता है उसको हम ज्ञान का विषय कहते हैं। जैसे घट ज्ञान है, जल ज्ञान है, तो घट ज्ञान में किसका ज्ञान हो रहा है? घट का ज्ञान हो रहा है, तो वहाँ पर घट ज्ञान में ज्ञान का विषय क्या कहलाएगा? घट कहलाएगा। ऐसे ही जल ज्ञान में ज्ञान का विषय क्या कहलाएगा? जल कहलाएगा। तो जिसका ज्ञान होता है वह ज्ञान का विषय कहलाता है। तो कुमारिल भट्ट के अनुसार क्या है कि ज्ञान होने के बाद तीन स्थिति बताई थी ना मैंने, उत्पत्ति वाली स्थिति, ग्रहण वाली स्थिति और प्रामाण्य ग्रहण वाली स्थिति। तो उत्पत्ति, जब ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, जब पहला स्टेज हो जाता है उसका, उसके बाद ज्ञान की उत्पत्ति होने के बाद उसमें वह जो ज्ञान का विषय होगा उसमें ज्ञातता नाम का एक नवीन धर्म उत्पन्न होता है, और वह जो ज्ञातता नाम का नवीन धर्म है ना, वह प्रत्यक्ष गम्य होता है, अर्थात उसको वह प्रत्यक्ष प्रमाण से जो है समझा जाता है, उस ज्ञातता धर्म को समझा जाता है। खैर, तो चलिए अभी मैं समझा ये रहा था कि ज्ञान जब उत्पन्न हुआ, पदार्थ ज्ञान जब उत्पन्न हुआ, तो फिर उस पदार्थ ज्ञान का जो विषय है उस विषय में ज्ञातता नाम का एक नवीन धर्म उत्पन्न होता है, ठीक है। और वह जो ज्ञातता नाम का धर्म उत्पन्न हुआ है ना, उस ज्ञातता नामक धर्म का कारण जो है वह कौन होता है? तो वह ज्ञान ही होता है, ठीक है। तो ज्ञातता नामक धर्म जो उत्पन्न हुआ, उस उत्पन्न ज्ञातता नामक धर्म से उस धर्म के कारण ज्ञान का जो है ना अनुमान किया जाता है, इसको अनुमान से नहीं कहते, अर्थापत्ति कह लीजिए। तो अब चलिए फिर मैं आगे समझाऊंगा। इसमें नोट ये करिए, ये जो ज्ञान ग्राहक सामग्री है उसके नीचे एक दंडा डाल करके लिखिए ज्ञातता। क्या लिखेंगे? ज्ञातता। ये ज्ञातता क्या है इसको मैंने समझाया है, फिर से समझ लीजिए कि जब पदार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है उसके बाद ज्ञान के विषय में ज्ञातता नाम का एक नवीन धर्म उत्पन्न होता है। तो ज्ञातता लिखने के बाद ब्रैकेट में लिख लीजिए नवीन धर्म। ये ज्ञातता नाम का नवीन धर्म उत्पन्न होता है किस में? ज्ञान के विषय में। जैसे जल ज्ञान होगा तो जल ज्ञान होने के बाद जल में, जल जो है उस ज्ञान का विषय है, तो जल में ज्ञातता नाम का एक नवीन धर्म उत्पन्न होगा, ठीक। और इसी ज्ञातता नाम के धर्म से जो है ना, ज्ञातता नाम का जो नवीन धर्म है, इसी धर्म से वो पदार्थ ज्ञान का ग्रहण होता है। तो यहाँ पर ज्ञान ग्राहक सामग्री जो है वह ज्ञातता है, इसलिए मैंने ज्ञान ग्राहक सामग्री के नीचे ज्ञातता लिखवाया, और इस ज्ञातता के कारण ही जो है ज्ञान का ग्रहण होता है। वह ग्रहण कैसे होता है? तो अर्थापत्ति के रूप में होता है। ये फिर एक अलग प्रसंग हो गया, लेकिन कहने के लिए ये कह लीजिए कि ज्ञान का ग्रहण होता है कुमारिल भट्ट के मत में ज्ञातता नामक धर्म से। तो ज्ञातता नाम, जैसे न्याय वालों के यहाँ अनुव्यवसाय से ज्ञान का ग्रहण होता था, यहाँ पर जो है ज्ञातता नामक धर्म से ज्ञान का ग्रहण होता है। यहाँ पर ज्ञान ग्राहक सामग्री जो है वह ज्ञातता है, क्लियर। तो ज्ञातता नामक सामग्री से पदार्थ ज्ञान का ग्रहण होता है, वह ग्रहण अर्थापत्ति के रूप में होता है। ये एक अलग बात है, ये अर्थापत्ति क्या होती है इसको आप पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे पीनो यम देवदत्तो दीवाना भुंगते, कि यह जो मोटा देवदत्त है वह दिन में नहीं खाता है, तो वहाँ पर रात्रि भोजन का आक्षेप किया जाता है, कि मतलब है कि वह रात में खाता है तभी तो वह पीन है, मोटा है, नहीं तो वह कैसे मोटा होगा। तो इसी का नाम अर्थापत्ति। अर्थापत्ति में आपत्ति का अर्थ है कल्पना, माने नए अर्थ की कल्पना करना, इसी का नाम है अर्थापत्ति। तो यहाँ जो ज्ञातता नामक धर्म से ज्ञान का ग्रहण होता है, ज्ञातता ज्ञान ग्राहक सामग्री है, इसमें ज्ञातता नामक धर्म के द्वारा पदार्थ ज्ञान का ग्रहण होता है, वह ग्रहण किस रूप में होता है, तो अर्थापत्ति के रूप में होता है। चलिए अब दूसरा जो है ये प्रामाण्य जो है, इस प्रामाण्य का की ग्राहक सामग्री क्या है कुमारिल भट्ट के मत में, तो कुमारिल भट्ट के मत में जो ज्ञान की ग्राहक सामग्री है ना, कौन है, ज्ञातता। इसी ज्ञातता से ही जो है उसके प्रामाण्य का भी ग्रहण होता है, तो उसके नीचे आप ज्ञान प्रामाण्य ग्राहक सामग्री के नीचे दंडा दे करके लिख लीजिए ज्ञातता, माने इधर भी ज्ञातता उधर भी ज्ञातता। तो ज्ञान ग्राहक सामग्री भी ज्ञातता है यहाँ इनके मत में, और ज्ञान प्रामाण्य ग्राहक सामग्री भी ज्ञातता ही है। तो इस तरह से मैंने जो लिखाया था कि ज्ञान ग्राहक सामग्री मात्र ग्राह्यत्वम स्वतो ग्राह्यत्वम, तो दोनों की सामग्री एक ही है, माने ज्ञान का ग्रहण भी होता है ज्ञातता से और ज्ञान के प्रामाण्य का ग्रहण भी होता है ज्ञातता नामक धर्म से, तो इसलिए यह स्वतः ग्राह्य प्रामाण्य कहलाएगा, माने ज्ञान ग्राहक सामग्री से ही ज्ञान के प्रामाण्य का ग्रहण हो जाता है, ऐसा मानना है कुमारिल भट्ट का। तो इस तरह से कुमारिल भट्ट के मत में और न्याय के मत में क्या अंतर है। अच्छा हाँ, एक और अंतर ये है कि कुमारिल भट्ट के मत में ना प्रामाण्य का ग्रहण तो होता है ज्ञातता से, लेकिन अप्रामाण्य का जो ग्रहण होता है वह अनुमान से होता है, मतलब परतः प्रामाण्य परतः जो है अप्रामाण्य का ग्रहण मानते हैं, माने प्रामाण्य का ग्रहण तो मानते हैं स्वतः, लेकिन अप्रामाण्य का ग्रहण मानते हैं परतः, परतः माने अनुमानतः। तो कुमारिल भट्ट के मत में ये भी विशेषता है। अब फिर से एक बार मैं दोनों को बहुत ही संक्षेप में क्लियर करता हूँ, न्याय मत और कुमारिल भट्ट के मत में। न्याय मत में ज्ञान ग्राहक सामग्री है अनुव्यवसाय, ज्ञान प्रामाण्य ग्राहक सामग्री है अनुमान, ऐसे ही ज्ञान अप्रामाण्य ग्राहक सामग्री भी है अनुमान। तो न्याय के मत में प्रामाण्य और अप्रामाण्य परतः ग्राह्य होता है, माने अनुमानतः ग्राह्य होता है, वह ज्ञान ग्राहक सामग्री से भिन्न जो है अनुमान सामग्री उससे गृहित होता है, लेकिन कुमारिल भट्ट के मत में दोनों की सामग्री एक ही है। ज्ञान ग्राहक सामग्री भी ज्ञातता है, ज्ञातता नाम का एक धर्म है जो ज्ञान के विषय में नया रूप से उत्पन्न होता है, तो ज्ञातता नामक धर्म से ही पदार्थ ज्ञान का ग्रहण होता है और ज्ञातता नामक धर्म से ही जो है ज्ञान के प्रामाण्य का भी ग्रहण होता है। ज्ञान ग्राहक सामग्री और ज्ञान प्रामाण्य ग्राहक सामग्री दोनों ही इनके मत में कुमारिल के मत में एक है। और एक क्या अंतर है कि न्याय के मत में प्रामाण्य और अप्रामाण्य ग्राहक सामग्री अनुमान होता है, लेकिन इनके यहाँ प्रामाण्य ग्राहक सामग्री तो ज्ञातता है किंतु अप्रामाण्य ग्राहक सामग्री जो है इनके यहाँ अनुमान है। इस तरह से प्रामाण्य कुमारिल भट्ट के मत में स्वतो ग्राह्य है और अप्रामाण्य जो है कुमारिल भट्ट के मत में परतो ग्राह्य है, लेकिन न्याय के मत में प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों परतो ग्राही ही है। इस तरह से आज का पाठ यहीं पर खत्म करते हैं।